कर्मकांड शिविर लेक्चर नंबर 19। देखो औदारिक शरीर ये शुभ प्रकृति है, शुभ हो या अशुभ हो, उत्कृष्ट स्थिति कब बनती है? संतुलित परिणाम में स्थिति बनने की बात है। अनुभव कोई बात नहीं, तो देवों को क्यों कहा निकालो, जहां लिखा है उसको वहां निकालो। आपने प्रश्न निकाला है उधर से, स्थिति बनने की बात हो रही, उत्कृष्ट स्थिति बनने की बात हो रही थी। के आसपास होगा, 140 में होगा शायद। एक सौ चालीस 41 पेज पे है। और इसका स्वामी कहाँ लिखा है, आपने कहाँ से पूछा वो मुझे बता। यानी अवतारिक शरीर अंगोपांग की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ाकोड़ी सागर है, ये पेज नंबर 141 लिखा है। परंतु आप जो देवनागरी की बात पूछ रहे हैं, आपका जिस एंगल से प्रश्न है, वो आपने कहाँ से लिया मुझे बता। हाँ औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग हीनंग गति हीनंग गत्यानुकूली उद्योग असंप्राप सुपाटिका सहन है इनको उत्कृष्ट सही स्थिति सही मिथ्या दृष्टि देव और नारद जीव बांधता है। ये आपका प्रश्न है। इसका अर्थ क्या है? अति संक्लेश में उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी। मनुष्य और तीर्यंच अति संक्लेश करेंगे तो क्या बांधेंगे? नरक। उसके साथ कौन सा शरीर बंधेगा? वैक्लेश। तो उसकी स्थिति वो बीस कोड़ा कोड़ी सागर बांध सकते। ये बात ख्याल में, क्योंकि देवगति के साथ बनता है, पर देवगति दस कोड़ा कोड़ी की बनते तो उनके साथ वैक्लेश शरीर दस कोड़ा कोड़ी का बनेगा। संक्लेश में उत्कृष्ट बनता है। अभी आपका ये प्रश्न है कि औदारिक शरीर की स्थिति बांधने को तो बीस कोड़ा कोड़ी सागर है और आयु बांधना तीन पल्ले की वो बात अलग है। तीन पल्ले की आयु जब मनुष्य तीर्यंच बांध रहे, मिथ्या दृष्टि मनुष्य तीर्यंच तीन पल्ले की भोग भूमि की आयु बांध सकते हैं। जब वो उसका बंध कर रहे हैं भोग भूमि संबंध है, वो तो मनुष्य आयु बांध रहे थे, तीर्यंच आयु बांध रहे थे। हम मनुष्य आयु की बात करते हैं तो मनुष्य आयु के साथ मनुष्य गति भी बंधेगी वहां पर। तो मनुष्य गति का उत्कृष्ट बंध कितना होता है? मनुष्य आयु का नहीं, मनुष्य गति का निकाल इधर, 20 नहीं होता है, मनुष्य गति का 15 होगा। निकाल निकाल, हमने उत्कृष्ट स्थिति मतलब किसका कितना होता है वो आपको बताया था ना, वही पेज नंबर 140 पर होगा। पेज नंबर 140 पहला पैराग्राफ, सातावेदनी त्रिवेद मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपी, इनका 15 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो उसके साथ जब औदारिक शरीर अंगोपांग बंधेगा तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधेगा, उसकी उतनी विशुद्धि है वहां पर। अब जब देव औदारिक शरीर का उत्कृष्ट बंध कर रहे हैं वो एकेंद्रीय जाति बांध रहे सौधर्मेशा वाले, और सनत कुमार महेंद्र जब पंचेंद्रीय जाति के साथ औदारिक शरीर का बंध कर रहे हैं उनके वहां पर उत्कृष्ट संक्लेश में तीर्यंच गति के साथ बंध करेगी, ऐसा सोचना है आपको। यानी उस पर्टिकुलर गति के जीव उत्कृष्ट संक्लेश में क्या बांध सकते हैं? इस तरह से उसने भूभूमि की आयु बांध दी, इसलिए उसको उत्कृष्ट अनुभाग में उत्कृष्ट लिया था, स्थिति में नहीं। क्या मेरी बात? और वो आयु के अनुभव की बात की, औदारिक शरीर के अनुभव की बात वहां नहीं की। औदारिक शरीर का अनुभाग कौन उत्कृष्ट बांधेगा? अनुभाग देवगति का, जब वो विषय विचना कर रहा है तब, क्योंकि तब वो मनुष्य गति के साथ औदारिक शरीर बांध रहा है, वो है प्रशस्त प्रकृति। तो चौथे गुण स्थान वाला औदारिक शरीर बांध सकता है तो उसकी उत्कृष्ट विशुद्धि कब हो गई? तो विषय विचना में होगी। आप कहेंगे देव को क्यों लिया, मनुष्य को क्यों नहीं लिया? मनुष्य चौथे वाला देवगति बांधेगा। इन्हें ये बहुत सारे एंगल से हमको सोचना पड़ता है। एक बार ये बातें पता चलती है ना तो ये अपना ज्ञान भी इतना पैना हो जाता है कि सभी एंगल ख्याल में आते हैं। नहीं तो क्या, एक अपेक्षा से बात करें दूसरी छूट जाती है। ये आया ना आपके प्रश्न का उत्तर, यह दूसरा एक प्रश्न है। एक नारकी अनंतानंद की विसर्जना करता है तो मुनिराज की अपेक्षा गुणश्रेणी निर्जरा, क्या लिखा है? जरा पढ़ के बताना ठीक है क्या? हाँ,
कल आपने बताया था कि सातवीं नरक का नारकी जब अनंत अनुबंधी की विष योजना करता है तो उसके मतलब मुनिराज की अपेक्षा से वहां पर गुण श्रेणी निर्जरा उसकी ज्यादा है। तो ये विवक्षित प्रकृति में समझना कि सब प्रकृति में समझना, मतलब
यह समझ में आया कृष्ण आपका? तत्वार्थ सूत्र का सूत्र क्या है बोलो? 90 अध्याय का 45 नंबर का सूत्र क्या है? असंख्यात गुणा निर्जरा के स्थान बताए। पहले में किसको लिया? हमने ऋषि ने, वो तो उपशामक जो है, तो अभी मिथ्या मिथ्यात्व में उसने शुरुआत की हो, गुणश्रेणी उसने मिथ्यात्व में रहते हुए मान ली, वहां जितनी गुणश्रेणी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणा पांचवे वाले की। श्रावक क्या ने पांचवा गुणस्थान, वीरत या ने संयत संयमी, फिर अनंतानुबंधी की विषय यही लिखा है वहाँ, उनकी गुणश्रेणी जब गुणश्रेणी होती है तो आयु छोड़कर सभी कर्मों में होती है। तो ये गुणश्रेणी का अर्थ क्या होता है कि अपकर्षण होकर कर्म गुणित प्रमाण में प्रति निषेध गुणित प्रमाण में उसको दिए जाते अपकर्षित द्रव्य, और वो गुणित प्रमाण दिए जाते जब उसका उदय आता है तो गुणित प्रमाण में वो दिए जाते। तो गुणश्रेणी की जहां लंबाई ज्यादा है वहां प्रति निषेध द्रव्य कम दिया जाता है। गुणश्रेणी जितने निषेकों में दिए जाते हैं वो अगर छोटी हो जाए, जैसे हम आपको पूछा था आप कितने भाई हैं, तो पिताजी की दौलत वे वो किस में बटेगा, तीन में, और हम छह सात हैं तो किस में बटेगा, छह सात में बटेगा। जैसे अनेक निषेकों में जाता है तो प्रति निषेक माल छोटा है, जहाँ गुणश्रेणी छोटी होती जाती है, ये जो ग्यारह स्थान बताए है आगे आगे वाली गुणश्रेणी छोटी होती है और अपकर्षित द्रव्य असंख्यात गुना बढ़ता है, वो जब निर्जरा होगी वो असंख्यात और असंख्यात गुना हो जाता है। तो मुनिराज की जो गुणश्रेणी है रेगुलर छठे सातवें की गुणश्रेणी की है उससे भी जब अनंतानंदी की विषयणी ना करता है तो गुणश्रेणी कम है, और ये गुणश्रेणी सातों कर्मों में हो रही है, अकेले अनंतानंदी में नहीं हो रही। कहीं पर भी देखो आप, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले हो या क्षपक श्रेणी हो, जब गुणश्रेणी बताई जाती है तो सभी द्रव्य में बताया जाता है, मोनी में भी और अन्य द्रव्य में भी। यहाँ पर भी अनंतानुबंधी तो संक्रमण द्वारा नष्ट हो रहे हैं परंतु गुणश्रेणी तो सभी द्रव्यों में बन रही है। तो इसलिए हमें भी आश्चर्य बढ़ता है, इसलिए लगता है आश्चर्य मुनिराज की अपेक्षा इनकी गुणश्रेणी ज्यादा क्यों गई, क्योंकि वहां मुनिराज के तो रेगुलर छठा सातवा गुणस्थान है और इनके कर्ण परिणाम है। तो अनंतानुबंधी वाले के कर्ण परिणाम से भी दर्शन मुनि की क्षपना करने वाले के कर्ण परिणाम में विशुद्धि और होगी तो वहां उसकी गुणश्रेणी और निर्जरा और असंख्यात गुना होगी। फिर उपशामक को लिया, फिर उपशांत कषाय को लिया, फिर क्षपक को लिया, फिर क्षीण मोह को लिया, फिर स्वस्थान केवली को लिया, फिर समुद्र केवली को लिया।
जब हम अनुभाग का प्रकरण समझ रहे हैं, अनुपात का प्रकरण तो विवक्षित पुण्य प्रकृति का, फिर सातवें नरक के नारकी को विवक्षित पुण्य प्रकृति का अनुभाग प्रशस्त प्रकृति में ज्यादा बन देगा और मुनिराज को इसकी अपेक्षा से कम।
ना ना ना, यहाँ अनुभाग बंद की बात ही नहीं है, निर्जरा की बात है।
नहीं भले निर्जरा की बात है लेकिन निर्जरा का भी सेटिंग तो विशुद्ध परिणाम के साथ
ऐसा नहीं, विशुद्ध परिणाम है तो करण परिणामों में विशुद्धि जाता है, ये तो नक्की है। छठे मनस्थान सातवा मनस्थान जो रेगुलर है स्वस्थान है उससे भी जब कोई जीव अनंतानुबंधी की विशुद्धि न करता है कहाँ कर सकता है, चौथे में भी कर सकता है, पांचवें में भी कर सकता है, छठे सातवें में भी कर सकता है, विशुद्धि न करता है तो वहां उनकी निर्जरा ज्यादा है, ये इतना वहां करना है। अब निर्जरा ज्यादा है किस रूप से वहां अनुभव के उदय है क्या है वो बहुत सारी अपेक्षाएं उसके अंदर आती है। कभी कभी स्थिति और अनुभव में घोटाले होते हैं ना, स्थिति में तो जहाँ संकल्प ज्यादा है वहां स्थिति ज्यादा है, और वो मनुष्य आयु बांधना अलग बात है और उसका अनुभाग बात अलग है और उधर शरीर का अनुभाग अलग बात है और स्थिति तो जुदी है। जहाँ स्थिति ज्यादा है आप कह रहे हैं वहां संकलेश है, और उधर शरीर का अनुभाग कहेंगे जब हम वहां विशुद्धि है। इसके लिए वो प्रशस्त है कि अप्रशस्त है इसका भी विचार करना, कौन सा गुणस्थान वाला तो कौन से गति का बांध रहा है ये भी विचार करना चाहिए। थोड़ी बंध विच्छुति हमारी हुई है अभी तक, परंतु ये इन विषयों की हम आदत नहीं ना, तो एक को सोचते तो दूसरी बात छूट जाती है। अभी हम अनुभाग का प्रकरण आगे बढ़ रहे हैं। ये अनुभाग की बात अपनी यहाँ चली थी 181 पेज पर, वहां से चली थी, वहां यही बात बताई गई थी कि शुभ जो प्रकृतियां हैं उसका अनुभाग अधिक कब बंधेगा जो विशुद्धि ज्यादा है, अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग ज्यादा कब बंधेगा जब संकलेश ज्यादा है। सरल है ना ये बात, तो कितनी अशुभ प्रकृतियां ऊपर विशुद्धि में भी तो बनती है, तब उनका क्या होगा अनुभाग कम बंधेगा। जैसे ज्ञानावरण का तीव्र अनुभाग कहाँ होगा, मिथ्या दृष्टि संकलेश वाले को, और फिर ज्ञानावरण तो दसवें तक बनती है तो वहां अनुभाग मंद होगा क्योंकि वो अप्रशस्त प्रकृति है। जब हमने सातावेदने की बात की थी दसवें गुण स्थान में बनने वाली, तो वहां उसका अनुभव उत्कृष्ट बनेगा। इतनी बात ख्याल में अब आगे बढ़े। 182 पेज पर हमने ये बात देखी थी, अप्रशस्त प्रकृतियां कितनी है और प्रशस्त कितनी है। तो अप्रशस्त प्रकृतियां हेड और 84, उसमें से दो बनने वाली नहीं है, तो 82 का हिसाब हम यहां बताएंगे बनने वाले की बात। और प्रशस्त कितना है तो 42 है, 42 प्रशस्त है और 82 है वो अप्रशस्त है, बनने वाली की बात चल। तो यहाँ 164 की टीका में हमने ये बात पढ़ी थी, फिर पढ़ती हूँ मैं। साता वेदनी आदि 42 प्रशस्त प्रकृतियां है, उनका तीव्र अनुवाद सहित बंध उत्कृष्ट यानी तीव्र विशुद्धता गुण जिसके पाया जाता है ऐसे जीव के होता है। अब जहां जो बनती है या कहीं विशुद्ध उसकी विचित्ति भी होती हो तो वहां पर उसकी विशुद्ध ज्यादा है तो वहां पर उसका अनुभव भी ज्यादा बन देगा। तथा असाता वेदनी आदि 82 अप्रशस्त प्रकृतियां उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम के धारक मिथ्या दृष्टि के तीव्र अनुभव सहित बनती है। ये बात भी ख्याल में। वर्णादि 4 शुभरूप प्रकृतियां प्रशस्त प्रकृतियों में गिनी है और वर्णादि 4 अशुभरूप प्रकृतियां अप्रशस्त प्रकृतियों में गिनी है, दोनों जगह इनका ग्रहण किया है। कल हमने बताया था ना कि हमें हमारे यहाँ भी बहुत चर्चा चली कि वो प्रशस्त बनती है, लेकिन कह रही वो प्रतिपक्षी नहीं है, दोनों बनती है और दोनों बनती है, हमें कहीं प्रूफ नहीं मिल रहा था तो हमने चर्चा करके निकाला था। आज सुबह सुबह मुझे पढ़ते समय यहाँ मिली है, देखो आपको बता रही हूँ, ये पढ़ा तो था परंतु शायद वो तभी छू गया होगा। दोनों को ध्रुव बंधु कहा जाता है। हाँ, पेज नंबर 189 पर मिला आपको। हाँ, 179 पर देखो, तेजस कारमान अगुरु लघु निर्माण प्रशस्त वर्णादिचार, ये ध्रुवबंदी प्रशस्त प्रकृतियां है। ध्रुवबंदी प्रकृति हमने 47 गिनी थी, आपको याद होगा, ज्ञानावरण की है, दर्शनावरण की है, अंतराय की है, मिथ्यात्व 16 कषाय वैभुषा की है, तेजस कारमाण है, वर्णादि 4 है, अगुरु लघु है, उपघात है और निर्माण है। इनमें से तेजस कारमाण अगुरु लघु निर्माण प्रशस्त वर्णादि 4 यहाँ एक उपघात को छोड़ दिया है, ये प्रशस्त को लिया है क्योंकि नाम कर्म के प्रशस्त है, बाकी जो घाती बंदी थी वो सारी अप्रशस्त थी, तो ये प्रशस्त वर्णादि को ध्रुवबंदी में लिया। अब बाकी छोड़ दो, नीचे का पैराग्राफ या नीचे का अप्रशस्त की बात है, पैराग्राफ में आगे उसके आगे। तथा सेकंड लाइन में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय उनकी भी 19, मिथ्यात्व 16 कषाय वैभुषा ये 19, अप्रशस्त वर्णादि 4 और उपघात ये ध्रुवबंदी अप्रशस्त प्रकृतियां है, दोनों को ध्रुवबंदी में लिया, उसका अर्थ हर समय दोनों का बंद हो रहा है। ये बात हमारे ख्याल में नहीं थी और वो बहुत चर्चा चली थी, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, कुछ हमारे सोल्यूशन नहीं मिल रहा। बिल्कुल उनके सामने तो धवला आदि ग्रंथ भी नहीं थे, परंतु जहां जहां हम रुकते थे कोई धवला में जयधवला में, तो हमको जीवकांड कर्मकांड और लब्धि सार खोल कर चर्चा करनी पड़ती, इसमें इतना एक्सप्लेनेशन है। ध्रुवबंदी है तो अनादि है, दोनों ही अनादि से,
दोनों को
अनादि से। अब दोनों को अनादि से लेंगे परंतु प्रकृति बंध में अनादि से लेंगे। अब देखो जहां विच्छित्ति होती है, प्रशस्त की विच्छित्ति कम है या अप्रशस्त, ध्रुवबंदी है दोनों की विच्छित्ति कम होगी, आठवें में होगी, आठवें अनुष्ठान के छठे भाग में। तो वहां प्रशस्त वर्णादि का अनुवाद कैसा होगा, तीव्र ही उत्कृष्ट होगा, तो अनादि से उसका अनुभव कैसा है, अनुत्कृष्ट है, समझते हैं। तो अनुत्कृष्ट पर 4 बातें घटित हो, सादे अनादि ध्रुव, अब प्रशस्त वर्ण वहाँ कैसे है, तीव्र मंद है, जघन्य है, तो उसका अजघन्य जो है वो अनादि है। समझ में आती है बात, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ख्याल में आए। प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों वर्णादि है, वो हर समय बंद है क्योंकि दुर्बंधी है। जहां बंद विच्छित हो गई वहां प्रशस्त का तो मैक्सिमम बंद अनुभाग, उसका अनुभाग अधिक होगा वहां पर, और अप्रशस्त अनुभाग जघन्य होगा उस पॉइंट पर। तो प्रशस्त के लिए क्या कहेंगे, अनादि से कौन सा अनुभाग बन रहा था, अनुत्कृष्ट, क्योंकि उसका उत्कृष्ट वहां पर है, और अप्रशस्त का अनादि से दो वो भी बन रही थी, पर अनादि से कैसी बन रही थी, अजघन्य। अजघन्य कहने से उसमें उत्कृष्ट वगैरह सब आ गए, अभी उसकी बात नहीं करनी हमको। तो अप्रशस्त में हमने जघन्य वहां पर होता है तो अनादि से अजघन्य था, प्रशस्त का वहां उत्कृष्ट होता है तो अनादि से अनुत्कृष्ट था, बस इतना ही लेना। यानी यहाँ तो उसका प्रूफ मिल गया ना कि दोनों ध्रुवबंधी है, दोनों को धीरे ध्रुवबंधी, वो प्रतिपक्षी नहीं है, जैसे स्थिर या अस्थिर, साता या असाता, यश के लिए अश के लिए, ऐसे उन्हें प्रतिपक्ष नहीं है, दोनों ही बंधी है और दोनों ही ध्रुवबंधी। ये नक्की हो गया ना। देखो अभी हम 183 पर आए थे, अब जो मिथ्या दृष्टि जीव जो प्रशस्त प्रकृतियां बांधता है और जो प्रशस्त प्रकृतियां ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती, जैसे आतप है, उद्योग है, समय दर्शन के बाद वो नहीं बनती है क्योंकि तीरंज गति के साथ बनने वाली प्रकृति है, तो उसका उत्कृष्ट बंध कौन करेगा, मिथ्या दृष्टि करेगा। और बाकी अप्रशस्त जो है उसका तो मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट समय से बंध करता ही करता है। बाकी यहाँ जो समय दृष्टि की जो आपने अवतारी शरीर वगैरह की बात पूछी थी, उसका उत्कृष्ट बंध कौन करेगा, तो उसमें भी हमने देखा था देवनारकी करेगा, क्योंकि जब वो विसर्जना वगैरह करता है उसकी बात अभी जो हमने चर्चा की थी उसकी, ये तो हमने कल पढ़ा था। हम यहाँ आए थे 184 पेज पर, मिथ्या दृष्टि जीव जब सम्यक के सम्मुख होता है, अन्य गतियों की बात करें, अन्य नारकियों, अन्य देवों की, मनुष्य तीर्यंचों की, तो तीर्यंच का तीर्यंच गति का बंध उसका रुकते चला जाता है, यानी तीर्यंच गति संबंधी प्रकृतियां, वो प्रायोग लगने के स्थानों में उसकी तीर्यंच गति का बंध रुक जाता है। तीर्यंच गति नहीं बंधेगी तो उद्योग प्रकृति भी नहीं बंधेगी। परंतु सातवें नरक के नारकी में क्या विशेषता है, वहां तो केवल समय दृष्टि ही जीव मनुष्य गति को बांधेगा, मिथ्या दृष्टि जीव भले वो अनिवृत्ति कर्म के अंतिम समय में भी क्यों ना हो, वो तीर्यंच गति को ही बांधेगा, तो वहां उद्योग भी बन सकते हैं। तो वो मिथ्या सातवें नरक के मिथ्या दृष्टि के वहां विशुद्ध परिणाम ज्यादा है, यानी वो सातवें नरक का नारकी हो या दूसरे नरक का नारकी हो, प्रथमोक्षम सम्यक के प्राप्त करने में अनिवृत्ति कर्म के अंत में उनकी विशुद्धि समान हम देखेंगे, चौथा को प्राप्त करने वाले न। परंतु दूसरे नरक का नारकी उस अंत समय में उद्योग नहीं बांध रहा है और वो मनुष्य गति बांध रहा है क्योंकि उसकी तीरंज गति का बंधापसरण हुआ है, परंतु उस पॉइंट पर सातवें नरक का नारकी तीरंज गति उद्योग बांध रहा है, तो उसकी अधिक विशुद्धि में उद्योग बांधता है, तो उद्योग का उत्कृष्ट अनुभाग बंध वो सातवें नरक का नारकी करेगा, ये कहना चाहते। उद्योग प्रशस्त है हाँ, वही पर वो निज गतिवान निज गोत्र बांध रहा है, वो अप्रशस्त है तो उसका वो जघन्य अनुभाग बन रहा है उस पॉइंट पर, अन्य मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा वो जघन्य अनुभाग बन रहा है। हाँ, आपका ये प्रश्न है, सातवें नरक का नारकी प्रथम मोक्षम समय को लेता है तो क्या सादी होना चाहिए मिथ्या दृष्टि के, अनादि होना चाहिए, कोई भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देशना लब्धि की कंडीशन है ना, देशना तो तीन दोनों तक की भी हो सकती है, पूर्व की देशना भी उसके होगी। अब आपने उस दिन फोन पर भी चर्चा की थी कि तीर्यंश को जो प्रथम ऑप्शन सम्यक तो होता है। तो क्या केवल उसने मनुष्य में सीखा हुआ वो उसके याद आके केवल वही उसकी देशना काम करती है, ऐसा है? तो शास्त्र में ऐसा आता है कि तिर्यंचों में रहने का उत्कृष्ट कार्य कितना है? हाँ बोलो। मैंने पूछा तिर्यंच गति में रहने का उत्कृष्ट कार्य कितना है? असंख्या सुदृढ़ परावर्तन। अरे एक इंद्रिय तो तिर्यंच है ना। वो तिर्यंच याद नहीं आते हमको। नहीं सुनो, पहले जो जिस बात की हम कर रहे हैं उसको हम प्रूव करें। तो ऐसा पूछते हैं तिर्यंच मार्गणा है ना, तिर्यंच मार्गणा यानी तिर्यंच गति का जीव है, और वो तिर्यंच गति में किसने प्रथम उपशम समय को प्राप्त किया? कब किया? तो संगी पंचम ने था तब किया। तो तिर्यंच में रहते हुए वो दोबारा कब सम्यक तो प्राप्त कर, अर्लीएस्ट तो अंतर्मुख में कर सकता है, परंतु लंबे काल वो मिथ्यात्व में रहेगा। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद वो फिर प्रथमोक्षम प्राप्त करेगा, बीच में वो मनुष्य नहीं हुआ है। तो मनुष्य में उसने सीखा और बाद में याद आया ऐसा उसमें नहीं है। इतना लंबे काल तक अर्ध पुद्गल परावर्तन तक कंटिन्यूस तिर्यंच में रहते हुए भी उसको दोबारा प्रथमोक्षम सम्यक तो हो सकता है, और उसमें जो सारी कंडीशन देशना अवधि की वो सभी लागू होगी। कौन सा? अरे छूट गया अपन असंख्य पल्ले के असंख्या भाग काल में, तो उसकी ये उद्वेलना होकर नष्ट हो जाते हैं। शादी होगा अपन अनादि जैसा ही एक मिथ्या तो प्रकृति वाला है, उसमें कोई पूर्व तीन प्रकृति होगी तो शादी का कुछ योगदान बनता है, ये अनादि जैसा हो गया।
कहने में उसको शादी बोलूं?
शादी कहो ना, क्योंकि भगवान ने जाना है। परंतु देखो एक बार सम्यक तो होकर छूट जाता है, तो सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति जो बनी है वो तो असंख्यात वर्षों तक बनी रहती है। अब वो मिथ्यात् में आने पर उसको अगर सम्यक दर्शन होता है तो वेदक ही होता है। कितनी बार तो असंख्यात वर्षों तक अगर उसको होगा तो वेदक होगा। क्यों? क्योंकि जब मिथ्यात्व में आया था तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की स्थिति कितनी बाकी थी, तो अंतर कोड़ा कोड़ी था। क्योंकि सम्यक तो प्राप्त करते समय उसने मिथ्यात्व की स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी बनाई थी, और उतने ही अन्य दो प्रकृतियों की स्थिति बन जाती है, उतने के उतने निश्चित होंगे। अब वही जीव मिथ्यात्व में आया तो मिथ्यात्व में आने पर कंडीशन क्या हो गई? सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति की स्थिति तो अंतर कोड़ा कोड़ी सा करे। मिथ्यात्व की कितनी होगी? जब आया था अंतर कोड़ा कोड़ी था, पर नया बंद करेगा तो कुछ कितना भी कर सकता है, 70 कोड़ा कोड़ी तक कुछ लिमिट नहीं उसको, कुछ भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति को फिर तीनों को उपसाना पड़ेगा प्रथम उपशम के लिए, तो उनकी इतनी बड़ी स्थिति के साथ वो तीनों को एक साथ उपशमा नहीं सकता, तो उन दोनों की उद्वेलना यानी उल्टा संक्रमण चलता रहता है, मिथ्यात्व रूप परिणमते रहते हैं। इसे परिणमते वो तो सागर जितने उनकी स्थिति रह जाएगी। अब तीनों को एक साथ वो उपशमा सकता है, इसलिए एक बार प्रथम उपशम होकर जीव मिथ्यात्व में आता है तो सम्यक तो अंतर्मूर्त में भी प्राप्त कर सकता है, पर दोबारा उपशम सम्यक होने के लिए उसको असंख्यात वर्ष चले जाते हैं, जिसको पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण वर्ष चले जाते हैं, बाद में उसको अभी उपशम सम्यक होगा प्रथम उपशम। तो बीच का जो इतना असंख्यात वर्षों का काल है उसको कहेंगे वेदक योग्य काल। उसके बाद वर्षा तक उसको करना है तो प्रश्नोक्षम ही करना पड़ेगा, उसमें सारे कंडीशंस लागू होंगे। उसके वेदक के लिए सारी कंडीशंस नहीं, उसके दो कर्म में भी हो जाते हैं, वो बहुत सारे उसकी लंबी प्रोसेस है। क्योंकि भगवान ने जाना है ना उसको, एक बार समय तो उनकी छूटा, इसलिए वो सादी मिथ्या दृष्टि। पर सादी मिथ्या दृष्टि दर्शन होने की एक प्रकृति वाला भी हो सकता है, दर्शन होने की दो वाला भी हो सकता है, क्योंकि समय प्रकृति पहले नष्ट हो जाती है, समय मिथ्या तो बाद में नष्ट हो जाता है। तो दर्शन होने की एक भी होगी, दर्शन होने की दो भी होगी, दर्शन होने की तीनों भी होगी, वो तीनों ही जो औषम ही समय को प्राप्त कर सकते हैं।
इसी तरह पर भगवान महावीर स्वामी के जीव पर लगाते हैं वो प्रथम कृष्ण नारायण जी, और वो पद बिना और उसके बाद गिर करके फिर सिंह पर्याय में आके देती है।
देखो वो कौन सा समय दृष्टि हम कैसे कह सकते हैं,
आने ये नहीं कह रहे कौन सा ऑप्शन है जो भी और उसके बाद छाया तो था ही नहीं, सवाल ही करता है
नारायण को तो मतलब नरक जाने वाला जीव है।
लेकिन जब पद लिया था या उस समय तो बिना मिथ्यात्म थोड़ी ये पद
समय दृष्टि था ना, उसका समय तो छूट गया होगा।
और जो सिंह पर्याय में पुनः प्राप्त किया वो था भी मिथ्या दृष्टि है।
हाँ उन्हें तो उसमें क्या है, और हम वो तो मारीची के जीव ने प्राप्त नहीं किया था कैसे कह सकते, उसके पहले भी होकर छुटा होगा हम कहाँ कह सकते हैं। और तो उद्गल परावर्तन काल को किसी का भी हो सकता है, ख्याल में हम उसको कुछ डिक्लेयर नहीं करेंगे। एक केवल ज्ञान की बात है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि क्या है ये प्रश्न हम बाद में करेंगे। ये सातवें नरक की बात हमने यहाँ देखी थी, हाँ 185 पर आए थे ना, 185 पर। हमने ये अनंतानुबंधी वगैरह वगैरह की बात पढ़ी थी, और प्रत्यक्ष अनावरण का कहाँ जगन्य होगा, चौथे से सातवें में जाने वाला, प्रत्यक्ष अनावरण का जगन्य होगा पांचवें से सातवें में जाने वाला, ये बात हमने कल पढ़ी थी यहाँ पर 185 पेज पर आते हैं। वो 172 लिखा है ना ऊपर तीसरी लाइन में, वो 171 चाहिए ना वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, हाँ 172 की टीका पढ़ेंगे। आहार द्विक प्रशस्त प्रकृति है इसलिए प्रमत्त विरत गुणस्थान के सन्मुख हुए संक्लेशी और प्रमत्त विरत गुणस्थान वर्ती जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। वो किसको बनती है, सातवें आठवें पे। तो सातवें और आठवें में कंपैरेटिवली संक्लेश परिणाम कब हो गए, जब सातवें वाला छठे के सन्मुख है तब, तब उसका अनुभाग जघन्य बनेगा और उसकी स्थिति ज्यादा बनेगी। अरति और शोक अप्रशस्त है। अरति शोक की बंध विच्छित कहाँ देखी थी हमने, छठे में, यानी छठे तक वो बनती है। इसलिए अप्रमत्त विरत गुणस्थान के सन्मुख हुए विशुद्ध प्रमत्त विरत गुणस्थान वर्ती जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। जब छठा गुणस्थान वाला सातवें के सन्मुख है तब अरति और शोक का बंध कर सकता है वहां पर, तो उसका अनुभाग जघन्य बनेगा क्योंकि छठे के योग्य विशुद्धि वहां ज्यादा है। सूक्ष्म अपर्याप्त साधारणीय तीन, देखो सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण का वंदना देव करते हैं ना नारकी करते हैं, मनुष्य ही करेंगे तीजेंच भी करेंगे। द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय तीन, देव द्विक नरक द्विक वैक्रिय द्विक ये छह और आयु चार, ये 16 प्रकृतियां मनुष्य तीजेंच के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। क्योंकि ये प्रकृति को बांधने वाले कौन है, मनुष्य ही तो है, इसलिए मनुष्य में जघन्य अनुभव से बनेगी। नीचे का करेगा उद्योग और औदारिक द्विक, ये देव और नारकी के जघन्य अनुभव सहित बनती है। उद्योग की बात अभी हमने देखी थी, उत्कृष्ट बंध उसको वो नारकी समय कुछ सातवें नरक का नारकी, और जघन्य भी देव नारकी को ही ले लिया होगा। क्यों, उसका कारण बताएं, वहां उद्योग प्रकृति अति विशुद्ध परिणामी देव के तो बनती नहीं, इसलिए संक्लेशी के जघन्य अनुभाग सहित बनती है क्योंकि उद्योग प्रकृति प्रशस्त है। आप पूछेंगे मनुष्यों को क्यों नहीं बनती, बनती है ना, मनुष्य की तो मनुष्य भी बांध लेंगे, परंतु मनुष्य अति संक्लेश परिणाम में तो नरक गति बांधेंगे, थोड़े कम संक्लेश में तीन इंच गति बांधेंगे, परंतु देव है वो संक्लेश परिणाम में नीचे के देव एक ही मिली जाति बांधेगी उसके साथ भी उद्योग बन सकती है, और सनत कुमार से वो पंचेंद्रिय जाति अति संक्लेश में बांधते हैं, अति संक्लेश में तीरंज गति उद्योग और बाकी सब उसके लगती हुई प्रकृतियां बांधेगी पंचेंद्रिय जाति वगैरह, तो उनको वो जघन्य अनुभाग बनेगा। प्रशस्त प्रकृति है, संक्लेश में जघन्य अनुभाग बनेगा उनको, इसलिए देव और नारकी को दिया। तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुकूल, ये देखो ये अप्रशस्त प्रकृति है, निज गोत्रीय भी अप्रशस्त है। उद्योग को प्रशस्त था तो नारकी सातवें नरक का नारकी उत्कृष्ट अनुभव बन रहा था, मिथ्या दृष्टि था। अब यहाँ ये अप्रशस्त प्रकृति है, इसका जघन्य अनुभव वही जीव बन लेगा सातवें नरक का नारकी। देखो ये तमस तमक सातवें नरक में विशुद्ध जीव के जघन्य अनुभव सहित बनती है। वो विशुद्ध ने भी अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय वाला रहे। स्थावर एक इंद्रिय ये दो प्रकृतियां नारकी को छोड़कर शेष तीन गति वाले जीव उत्कृष्ट संक्लेश और विशुद्ध परिणाम से रहित मध्यम परिणामी जीव के जघन्य अनुभव सहित बनती है। मध्यम परिणामी इसलिए लिया क्योंकि अति संक्लेश में तो अति संक्लेश में इनका अनुभव अति बनेगा ना, उत्कृष्ट बनेगा, ये अप्रशस्त प्रकृतियां है। संक्लेश में अनुभव ज्यादा बनेगा, ये कहना चाहते और विशुद्ध परिणाम में तो बनेगी नहीं, इसलिए मध्यम परिणाम वाला है। आगे आते 186 पेज पर आतप प्रकृति। आतप प्रकृति कब बनती है? जब एक इंद्रिय का पर्याप्त का बंद कर रहा है। आतप किसमें पाई जाती है? पृथ्वी का। तो जो जीव पृथ्वी का ही संबंधी एक इंद्रिय स्थावर आतप आदि प्रकृति बांध रहा है, ऐसा जीव सोचना है तो किसको बनती है? तो संक्लेश परिणामी भवनत्रिक और सौधर्मत्विक के जघन्य अनुभव सहित बनती है। वह है प्रशस्त प्रकृति। जघन्य अनुभव कब बनेगा? जब संक्लेश हो, क्योंकि देव संक्लेश परिणाम में एक इंद्रिय बनेगी, उसके साथ आतक बन सकती है, तो वहां उसका जघन्य अनुभव होगा। तीर्थंकर प्रकृति हमने पहले देखी थी स्थिति बंद के प्रकरण में। स्थिति मैक्सिमम कब बनती है? वो नरक के सम्मुख वाला है, यह अनुभव उसका जघन्य तभी बनेगा। तो तीर्थंकर प्रकृति नरक जाने के सम्मुख हुए असंयत गुणस्थानवर्ती मनुष्य के जघन्य अनुभव सहित बनती है। यानी जो चौथे से अभी मिथ्यात्व में जाएगा, फिर मरकर नरक में उत्पन्न होगा दूसरे या तीसरे, उसकी बात यहां कर रहे। अब 175 की गाथा नीचे परघात उच्छ्वास। देखो ये प्रशस्त प्रकृति है। तेजस कारमण त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शुभरूप वर्णाधिचार निर्माण पंचेन्द्रिय अग्रलोक। ये 15 प्रकृतियां चारों गतियों के संक्लेशी जीव के जघन्य अनुभव सहित बनती है, क्योंकि इनका उत्कृष्ट अनुभव कहाँ देखा था? इनकी बंधे हुई चित्ती होती वहां पर, तो इनका जघन्य कहाँ होगा? संक्लेश वाले को, क्योंकि ये प्रकृतियां प्रशस्त है। स्त्रीवेद और नपुसक वेद दोनों अप्रशस्त है, इसलिए चारों गतियों के विशुद्ध जीव के जघन्य अनुभव सहित बनती है। देखो जब विशुद्ध जीव कहेंगे आप, कहेंगे विशुद्धि ज्यादा है तो पुरुष वेद बांधेंगे, परंतु जो प्रायोग लब्धि के स्थान आपने देखे होंगे, जहां तक स्त्री वेद का बंधन है, फिर बाद में नपुसक वेद का, पहले नपुसक वेद का बंध रुक जाता है, बाद में स्त्री वेद का बंध रुक जाता है, उस स्थान पर ये बंध योग्य है और वहां पर उस योग्य विशुद्धि है, तो वहां पर इनका अनुभव जघन्य होगा।
तीर्थंकर प्रकृति नरक जाने के सम्मुख में, तो मतलब जघन्य अनुभाग भी वो बांधेगा और उत्कृष्ट अनुभाग भी?
उत्कृष्ट अनुभाग तो आठवें गुणस्थान वाला बांधेगा,
ये उत्कृष्ट स्थिति,
उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य अनुभाग प्रशस्त प्रकृति है ना, स्थिति उत्कृष्ट बांध रहा है संक्लेश में और अनुभाग जघन्य बांध रहा है। अप्रशस्त प्रकृतियों में जहां उत्कृष्ट संक्लेश है, वह अनुभाग भी उत्कृष्ट है और स्थिति भी उत्कृष्ट है। अब 187 पृष्ठ पर आते हैं, यानी आगे जो 177 में जो प्रकृतियां बताई जाने वाली है उसकी बात करते, वो वहीं से पढ़ेंगे 187 पेज पर। स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति, साता असाता, ये 8 प्रकृतियां। ये किसके बनती है? मिथ्या दृष्टि के सम्य दृष्टि के, दोनों के बनती है। क्योंकि अस्थिर की उदय बंध विच्छेद छठे में हुई थी शुभ की अस्थिर, तो ये तो समय दृष्टि के भी बनती है मिथ्या दृष्टि। अब इसमें से जो प्रशस्त प्रकृतियां है उनका उत्कृष्ट अनुभाग ऊपर के उन स्थानों में बंध विच्छेद के पास, और जो अशुभ प्रकृतियां उनका उत्कृष्ट अनुभाग मिथ्या दृष्टि संकलित परिणामों के होगा। जघन्य कहाँ होगा? इन बिटवीन परिणामों में होगा। फिर से सोचो, स्थिर अस्थिर हो या यशकीर्ति अयशकीर्ति, हमें यशस कीर्ति की बात करते हैं। यशस कीर्ति शुभ प्रकृति है, उसका उत्कृष्ट अनुभव कहाँ बनेगा? दसवें में। और यशस कीर्ति अशुभ प्रकृति है, उसका उत्कृष्ट अनुभव कहाँ बनेगा? मिथ्या तो में बंध विच्छेद बने छठे में हुई, परंतु उसका उत्कृष्ट अनुभव कहाँ बनेगा? मिथ्या तो में। अब दोनों का ही जगन्य अनुभव कहाँ बनेगा? मध्यम परिणामों में। ख्याल में आते हैं ना? देखो, ये अप्रशस्त प्रकृति, ये कौन सी? अयशस कीर्ति छठे गुणस्थान में बनती है, पहले गुणस्थान तक वहां तक भी बनती है, और यशस कीर्ति वो भी पहले गुणस्थान से, पहले गुणस्थान वाले को भी बन ही सकती है ना, तो कहां तक बनती है? दसवें तक। पहले तो दोनों प्रतिपक्षी है, तो अयशस कीर्ति मिथ्यात्व में उसका उत्कृष्ट अनुभव है, और यशस कीर्ति का उत्कृष्ट अनुभव दसवें में, और इन बिटवीन क्या होगा? ये मध्यम परिणाम है, ये मध्यम परिणाम में उसका दोनों का जगन होगा। कहेंगे परंतु अनुभव वहां ये हमें पढ़ते देखो, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति, साता असाता, ये आठ प्रकृतियां अपरिवर्तमान मध्यम परिणामी सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के जगन्य अनुभाग से ही बनते हैं। यानी यहाँ इसी वो जगन्य बांधने वाला वो छठे गुण स्थान वृत्ति होना चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं डाली वहां पर, है ना? सम्य दृष्टि भी बांध सकता है जगन्य, मिथ्या दृष्टि भी बांध सकता है, ये कहेंगे। और उच्च गोत्र छह संस्थान सहन छ, प्रशस्त अप्रशस्त विहार गति, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, सुभग दुर्भग, आदे अनादे, ये 23 प्रकृतियां परिवर्तमान मध्यम परिणामी मिथ्या दृष्टि के ही जगन्य अनुभाग सहित बनती है। हाँ, ये परिवर्तमान और अपरिवर्तमान का अर्थ नीचे देखो, एकदम नीचे का पैराग्राफ, बीच में वो प्राकृत दिया है उसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया है, वहां से पढ़ते हैं। अनुसमय ने प्रति समय केवल वर्धमान अर्थात बढ़ते ही जाए और हीयमान अर्थात घटते ही जाए, ऐसे संक्लेश रूप और विशुद्ध रूप परिणाम वे अपरिवर्तमान कहलाते हैं। यानी ये तो विशुद्धि हो या संक्लेश रूप चल बढ़ रहा है तो अपरिवर्तमान, यानी परिणाम उलट कर नहीं आता, और जिस परिणाम में स्थित होकर परिणामांतर को प्राप्त होकर किसी एक परिणाम से पलट कर उसी परिणाम को प्राप्त हो, ये जहां शक्य है। यानी मान लेते हैं उसकी विशुद्धि बढ़ रही है, फिर वापस वो लौट कर वो पूर्व परिणाम तक आ सकता है, या संक्लेश बढ़ रहा है और वापस लौट कर पूर्व संक्लेश को आ सकता है, उसको कहेंगे परिवर्तमान। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जहाँ विशुद्धि अति है, विशुद्धि ज्यादा है, वहाँ प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव ज्यादा बनेगा, जहाँ संक्लेश ज्यादा है वहाँ अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभव ज्यादा बनेगा, ये उन्हें यहाँ कहना चाहते हैं। ये स्टैंडर्ड ही है, परंतु जहाँ दोनों ही बन सकती है, जहाँ साता भी बन सकती है असाता भी बन सकती है, अभी दोनों कुछ स्थान ऐसे हैं दोनों के ओवरलैप है, अभी उसके लिए थोड़ा डिटेल का अभ्यास है। हाँ, तो दोनों का जगन इन बिटवीन परिणाम में मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है समय पर, इतने अपने समझने के लिए कार्य कर रहे
हैं।
हाँ, कहीं पर भी होता है। नहीं, वो तो प्रायोगिक लब्धि के स्थान जिसको मालूम है उसी की बात ये घटित हो सकती है। अभी उसके लिए वो 34 स्थानों का बिल्कुल जिसको फटाफट बोलो 34 स्थान बोल दो आप तो मैं आपको समझा सकती हूँ। मैं बोलूँ पर आपको उसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा कौन से स्थान पर कौन से प्रकृतियाँ बंध से रुकती है कब प्रथम मोक्षम के संग तो वहाँ उसका जगन ही अनुभव होगा प्रशस्तों का।
तो विशुद्धि बढ़ती जा रही थी पर आगे नहीं गया वो करने लग गई और किसी और कार्य में लग गया और जा करके
नहीं वो तो कहीं पर भी घटित हो सकता है ये विशुद्धि बढ़ती है ऑर्डिनरीली भी उसको प्रायोगिक लब्धि में होना चाहिए ऐसी भी नहीं विशुद्धि बढ़ रही है और वापस लौट कर फिर संक्लेश में आता ये भी हो सकता है मध्यम परिणाम में। इसका भावार्थ यहाँ लिया है देखो पेज नंबर 188 सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से तो शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव बंद होता है। पेज नंबर 188 भावार्थ यहाँ जगन्य अनुभव का कथन चल रहा है इसलिए सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम का ग्रहण नहीं करना। एक बात सर्वोत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से भी जगन्य अनुभव नहीं होता क्योंकि तीव्र संक्लेश द्वारा अशुभ प्रकृतियों का अनुभव वृद्धि रूप बहुत होता है इसलिए वहां अशुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट कहेंगे। यहाँ जगन्य अनुभव का कथन है इसलिए सर्वोत्कृष्ट संक्लेश परिणाम का भी ग्रहण नहीं करना। इस कारण जगन्य उत्कृष्ट परिणामों के निराकरण के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणामों द्वारा पूर्वोक्त प्रकृतियों का जगन्य अनुभव बंद होता है ऐसा कहना चाहिए। यानी इन बिटवीन मध्यम परिणामों में एक परिवर्तमान शब्द छोड़ दो आपके लिए तो यह मध्यम परिणामों में उसका जगन्य होगा वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है सम्य दृष्टि भी हो सकता है ये यहाँ का कथन है। अब हम फिर लौट कर वो
एग्जैक्टली जगन्य वाला लेना कि वो अपना जो चार भेद थे ना उसमें ये अजगन्य के ग्रुप में भी आ सकता है।
नहीं नहीं एकदम से जगन नहीं लेना पर वो कौन से स्थान पर उसका स्वामी कौन है तो मिथ्या दृष्टि भी मान सकते हैं बस इतनी बात है। देखो अभी 178 की टीका फिर पढ़ते हैं। अब मूल प्रकृतियों में के उत्कृष्ट आदि ये फिर आया उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट आदि अनादि पहले हमने प्रकृति में देखा था फिर स्थिति में भी देखा अब अनुभाग में भी देखना है। अनुभाग उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य इसकी हम चर्चा करें। ये चार हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है क्या हम उसको नहीं छोड़ रहे पता नहीं। देखो 178 में यही बात बता रहे देखो अलग अलग स्थिति बंध वगैरह पर समझने का फायदा ये है कि जो हमने एट ए टाइम सबकी बात ठीक है अब अलग अलग करने से और ज्यादा ख्याल में आता है। अभी तो हमने देखा ना अनुभाग का जगन्य कहाँ होता है उत्कृष्ट कहाँ होता है तो उसमें अलग अलग प्रकृतियां लेकर हम सोच सकते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे 178 की टीका चारों घाती कर्मों का चार घाती कर्म प्रशस्त है कि अप्रशस्त है पहले नक्की करो। अब उनका जगन्य अनुभाग कहाँ होता है ऊपर की अभी हमको स्पेसिफिक नहीं लेना है एक का ऊपर की गुणस्थान तो अनादि से कैसा अनुभव बंद हो रहा था अजगन्य अनादि से अजगन्य हो रहा था। अभी इसकी बात करेंगे चार घाती कर्मों का अजगन्य अनुभव बंद अभी बीच वाली छोड़ दो लाइन सेकंड लाइन में लास्ट में पढ़ो सादि अनादि ध्रुव और अध्रुव भेद से चार प्रकार का है। फिर से हम एक एक वाक्य के तीन भेद करके पढ़ेंगे इसको पहले किस पर लगाना चार घाती कर्मों का चार ये मूल प्रकृतियों की बात चल रही है चार घाती कर्म कैसे प्रकर्म है अप्रशस्त है बराबर है तो उसका जगन्य अनुभव कहाँ है शपक में या ऊपर के गुणसार में जहाँ यथायुक्त है तो अनादि से कैसा बंद चल रहा था जब तक शपक यानी शपक में नहीं जाएगा तब तक उसका बंद अनुभाग बंद कैसा चल रहा था अजगन्य चल रहा था इसलिए उसको अनादि कहेंगे। उष्ण श्रेणी चढ़कर उतरने वाले के उसका अनुभाग बंद रुक गया था और वापिस शुरू हुआ तो भी अजगन्य ही है तो उसको क्या कहेंगे सादि कहेंगे। तो अनादि शादि दोनों प्रूव हो गए। अब जो कभी क्षपक श्रेणी भी नहीं चढ़ेगा, कभी जगन्य करेगा ही नहीं, उसका अजगन्य कैसे चलेगा? ध्रुव रूप से चलेगा। जो कभी उष्ण श्रेणी चढ़ के उतरेगा या क्षपक होकर चला जाएगा मोक्ष में, उसका कैसा होगा? वो अध्रुव होगा। तो अजगन्य अनुभाग पर, घाती कर्मों के अजगन्य अनुभाग पर चारों गठित हुए, ये बात ख्याल में। आगे बढ़ते, वेदनी और नाम कर्म का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंधा। अब वेदनी और नाम कर्म का उत्कृष्ट अनुभाग बंध कहां होगा? हाँ, क्योंकि वहां वेदनी में से साता वेदनी उत्कृष्ट हो रहा है और नाम कर्म में से यशस कीर्ति का उत्कृष्ट हो रहा है। बाकी अनादि से कैसा हो रहा था? अनुत्कृष्ट। तो वो भी कैसा होगा? अनुत्कृष्ट अनादि से है। उपशम श्रेणी करके उतरा तो फिर वो साधी हुआ, अनुत्कृष्ट वो साधी हुआ, और फिर अध्रुव है। ध्रुव अध्रुव दोनों है। अभी गोत्र कर्म का, गोत्र कर्म का अजगन्य और अनुत्कृष्ट बंध तो साधि अनादि ध्रुव अध्रुव भेद से चार प्रकार का है। गोत्र में अजगन्य और अनुत्कृष्ट लिया, क्योंकि गोत्र कर्म का जगन्य कब होगा? अभी उसमें निज गोत्र की अपेक्षा अगर लेते हैं तो वो तो सातवें नरक के सम्मुख वाला, वो तो मिथ्या दृष्टि सम्यक के सम्मुख वाला लेना पड़ेगा। गोत्र कहने से उसकी जो भी प्रकृति है उसको लेना पड़ेगा। ख्याल में आती है? गोत्र में निज गोत्र का वहां जगन्य है।
तो दूसरे नरकों में भी
आपका प्रश्न है, सातवें नरक वाले को क्यों याद करते बार बार? दूसरा नरक का भी समय संगम तो होता है, परंतु वो प्रायोगिक लब्धि के काल में ही निज गोत्र तीन गति आदि के बंधाक्षरण कर देता है। 34 स्थानों में से निज गोत्र का शायद 34वां या कोई स्थान होगा। समझ में आती है? सार्वमय कर्म अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय तक उसका बंध है। तो मिथ्या दृष्टि के योग्य विशुद्धि वहां मैक्सिमम है।
ये बंधाक्षरण नहीं करता है सातवें नरक का नारकी।
वही तो कह रहे हैं, सातवें नरक के नारकी की ये विशेषता है, जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक वो तीन गति का एक ही का बंध करेगा, उसको मनुष्य गति बंध ही नहीं सकती। वहां मात्र समय दृष्टि जीव ही मनुष्य गति का बंध करेगी, ये उसकी विशेषता है। तो गोत्र कर्म का अजगन्य भी लिया और अनुत्कृष्ट भी लिया। उसमें गोत्र कर्म है उच्च गोत्र का उत्कृष्ट तो ऊपर होगा, उसकी अपेक्षा से अनुत्कृष्ट भी बंध अनादि से चल रहा है, क्योंकि मूल प्रकृति पर घटित कर रहा है, तो जो जहां पॉसिबल है उसको लेना है, इसे दोनों प्रकार से लिया उसको। अवशेष चारों घाती कर्मों के अजगन्य को छोड़कर, यानी हमने अजगन्य को ऊपर सिद्ध किया था, किसको किसको छोड़ा? उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जगन्य को छोड़ा था। जिसका जहां लिया नाम लिया ना, उसके छोड़कर अन्य वेदिनी और नाम के अनुत्कृष्ट ऊपर लिया था, अनुत्कृष्ट छोड़कर बाकी तीन, और गोत्र के अजगन्य और अनुत्कृष्ट को छोड़ा तो जगन्य और उत्कृष्ट को लेना, ये कैसे है? तो उनमें साधी और अध्रुव है। जिसमें हमने साधी अनादि ध्रुव और अध्रुव घटित किए उसको छोड़ो तो बाकी जो बचे उसमें क्या घटित होगा? साधी और अध्रुव। फिर से पढ़ो ऊपर क्या कहा था, चार घाती कर्मों का अजगन्य। क्यों? क्योंकि जगन्य था वो ऊपर क्षपक में था, तो अजगन्य वो साधी अनादि सब हो गया, तो उसका जगन्य कैसा होगा? साधी होगा ना, जब क्षपक में चलेगा तब शादी होगा, और शादी है तो अध्रुव है। ख्याल में है ना? जगन्य पर लगाए उसका उत्कृष्ट मिथ्या दृष्टि पंचेन्द्रिय तीव्र संक्लेशी होता है तब उत्कृष्ट है, अदरवाइज अनुत्कृष्ट है, तो वो भी कैसे है? शादी और अध्रुव है, क्योंकि जब उत्कृष्ट हो रहा था तब अनुत्कृष्ट नहीं हो रहा था, जब अनुत्कृष्ट हो रहा था तब उत्कृष्ट नहीं हो रहा था, इस तरह से उसको साधी और अध्रुव कहेंगे। एक को हमने चार घटित किए तो बाकी रिमेनिंग वो उसमें साधु और अधूरो घटित हो गए, इस सब में ऐसा ही लेना। अभी हमने ये पढ़ा था ना 179 की टीका में, फिर पढ़ते इसको। ये ध्रुवबंदी में तेजस कारमान अगुण लघु निर्माण प्रशस्त वर्णादि, ये ध्रुवबंदी प्रशस्त प्रकृतियां हैं, इनका अनुत्कृष्ट अनुभाग बंद कैसा है साधिया, देखो इनका ध्रुवबंदी है और प्रशस्त है, उनका मैक्सिमम अनुभाग बंद कहाँ होगा? हाँ, जहाँ आठवें गुण स्थान में बंदे उचित की होती है। तो जब तक वो शपक में नहीं चढ़ा आठवें में, तब तक अनादि से कैसा बंध रहा था? अनुत्कृष्ट बंध रहा था। तो अनुत्कृष्ट में क्या कहेंगे हम? अनादि है। उपशम श्रेणी वो ऊपर के गुण स्थान में जाके फिर नीचे आया तो आदि हुआ, साधि हुआ। जो अभव्य कायम ध्रुव रूप से बांधता है उसके लिए ध्रुव है, और जो बंद विच्छिद करके चला जाता है ऊपर तो उसके लिए अध्रुव है। तो उत्कृष्ट क्षपक श्रेणी में है, तो अनादि से अनुत्कृष्ट था तो उसको साधि अनादि ध्रुव अध्रुव चारों लगा, और जो बाकी रिमेनिंग है उस पर ऊपर साधि और अध्रुव कहेंगे। अब दूसरी लाइन देखो, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतरा की 19 मिथ्या को 1 16 कषाय भयजगुप्सा अप्रशस्त वर्णादि 4 और उपघात, ये भी ध्रुवबंदी है, पर ध्रुवबंदी में कैसे है? अप्रशस्त है। तो ये जो अपने अपने बंधे विच्छित्ति के समय उनका कैसा अनुभव होगा? जघन्य होगा। तो अनादि से कैसा हो रहा है? वह जघन्य। तो वो कैसा है? साधि अनादि ध्रुव और अध्रुव है, तो उनका अजघन्य अनुभव बंध साधि अनादि ध्रुव और अध्रुव भेद से 4 प्रकार का। इन्हें ध्रुवबंदी के प्रशस्त अप्रशस्त पर घटित कर दिया उन्होंने। पुनश्च निरंतर जिनका बंध पाया जाता है, ऐसी पूर्वोक्त जो ध्रुवबंदी प्रकृतियां उनका तो इनके बिना, यानी जो हमने ऊपर घटित किया है अनुत्कृष्ट या अजघन्य जो कुछ है, जघन्यादि 3 प्रकार का अनुभाग बंध तथा अध्रुवबंदी 73 प्रकृतियों का, जगन्यादि सभी 4 प्रकार का अनुभव बंध साधि और अध्रुव के भेद से 2 प्रकार का, इसका अर्थ देखते हैं। ऊपर हमने तेजस कारमान वगैरह के कारण देखा उनका उत्कृष्ट कहाँ होता है? बंध विच्छित्ति के समय प्रशस्त प्रकृति है, अनादि से अनुत्कृष्टता उसमें 4 घटित होते हैं, तो अनुत्कृष्ट पर 4 घटित होते हैं। तो अनुत्कृष्ट को छोड़ दो, क्या बचा? जगन्य अजगन्य और उत्कृष्ट, उसमें 2 ही घटित होगी साधि और अध्रुव। अप्रशस्त प्रकृतियों में हमने क्या देखा था? उनका जघन्य कहाँ है? जहां बंध विच्छित्ति होती है, अनुभाग बंध। तो जघन्य को छोड़ो, और जघन्य उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट वो कैसे होंगे? साधि और अध्रुव। एक बात, दूसरी बात, उन्होंने प्रतिपक्षी पर घटित जो अध्रुवबंधी प्रकृतियां, अध्रुवबंदी में क्या देखा था? तीर्थंकर है, आहार द्वीप है, 4 आयु है, ये कैसी है? अध्रुवबंदी, वो अप्रतिपक्ष वाली और सप्रतिपक्ष वाली, और वो भी अध्रुवबंदी है, वो साता असाता नीच उच्च गोत्र वगैरह सब हमने घटित किए थे, लंबी 62 हमने गिनाई थी। तो वो कैसी है? प्रतिपक्षी है, वो परघात वगैरह भी जो होते बंदे द्वंदे नहीं तो बंदी, ऐसे भी वो अप्रतिपक्षी वाली थी, वो कभी बनती है इसलिए कैसी है? साधी है और अध्रुव है। प्रतिपक्ष वाली जो है या अध्रुवबंदी जो प्रकृतियां होती है वो हर समय ध्रुवबंदी जैसे निरंतर हर समय नहीं बनती है, कभी कभी बनती है, तो उसको साधी कहेंगे और इसीलिए उसको अध्रुव भी कहेंगे। यही बात अभी हमने पढ़ी। अब ये साधी अनादि का ये प्रकरण हो गया, यहाँ पर हम यही रुकेंगे। अभी अनुभाग में जो कुछ स्पर्धावादी की विशेष बातें हैं सर्वघाती वगैरह उसकी चर्चा थोड़ी देर के बाद करेंगे, ये रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान।